दानियल की पुस्तक संख्या 44।
खोई हुई बुनियादों का अनावरण। विलियम मिलर के भविष्यवाणी संबंधी सत्य और एडवेंटवाद के अंतिम दिन।
विलियम मिलर के आधारभूत सत्य एडवेंटवाद की चार पीढ़ियों के दौरान ढक दिए गए। उन आधारभूत सत्यों की पुनर्स्थापना उनके दूसरे स्वप्न में वर्णित है और बाइबल तथा भविष्यवाणी की आत्मा में बार बार इसे उस कार्य के रूप में पहचाना गया है जिसे परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा को पूरा करना है। मिलर के स्वप्न में कहा गया है कि जब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति रत्नों को पुनर्स्थापित करेगा तो वे सूर्य से 10 गुना अधिक चमकेंगे।
मिलर का ढांचा मूर्तिपंथ और उसके बाद पोपवाद की दो उजाड़ने वाली शक्तियों की पहचान पर आधारित था और थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में प्रेरित पौलुस की गवाही ने उन्हें अपने ढांचे के लिए आधार प्रदान किया। वहां पौलुस बताता है कि मूर्तिपरस्त रोम ने पोप तंत्र को सत्ता में उभरने से रोके रखा था जब तक कि मूर्तिपरस्त रोम हटा न दिया गया। द्वितीय थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने फ्यूचर फॉर अमेरिका के ढांचे के लिए भी आधार दिया जब उन्होंने ये पहचाना कि उस अध्याय का पाप का मनुष्य दानियेल अध्याय 11 पद 36 में स्वयं को ऊंचा करने वाले राजा के रूप में भी दर्शाया गया है।
ये देखना आवश्यक है कि पहले और तीसरे स्वर्गदूतों के आंदोलन में ज्ञान की वृद्धि थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में पौलुस की गवाही से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। अंत के समय 1707-08 या 1979 में भी दानियेल की पुस्तक की मुहर खोली गई और इस प्रकार एक 3 चरणीय परीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस इतिहास में भी दानियेल की पुस्तक की मुहर खोली जाती है उस इतिहास में ये परीक्षण प्रक्रिया हमेशा उपासकों की 2 श्रेणियां उत्पन्न करती है। अंत के समय में ज्ञान की वृद्धि के संदर्भ में पौलुस के लेखन को देखना आवश्यक है क्योंकि उसी अध्याय में पौलुस चेतावनी देता है कि जो लोग सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं करते वे परमेश्वर की ओर से प्रबल भ्रम प्राप्त करेंगे। यही प्रबल भ्रम दानियेल अध्याय 12 में उन दुष्टों पर लाया जाता है जो ज्ञान की वृद्धि को अस्वीकार करते हैं। दोनों इतिहासों में ये प्रबल भ्रम सबसे प्रत्यक्ष रूप से एडवेंटवाद का ही संकेत करता है।
जो बाह्य रूप के नीचे तक देखता है, जो सब मनुष्यों के हृदयों को पढ़ता है, वो उन लोगों के विषय में जिन्हें बड़ा प्रकाश मिला है कहता है, वे अपनी नैतिक और आत्मिक दशा के कारण न तो पीड़ित हैं और न विस्मित, वरन उन्होंने अपने ही मार्गों को चुन लिया है और उनकी आत्मा को उनकी घिनौनी बातों में आनंद आता है। मैं भी उनके भ्रमों को चुनूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हें उन पर ले आऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तब किसी ने उत्तर न दिया, जब मैंने कहा तब उन्होंने न सुना, पर उन्होंने मेरी आंखों के सामने बुराई की और उसी को चुन लिया जिससे मैं प्रसन्न न था। परमेश्वर उन पर प्रबल भ्रम भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने उद्धार पाने के लिए सत्य के प्रेम को ग्रहण न किया वरन अधर्म में आनंदित हुए। यशाया 66:3-4, 2 थिस्सलुनीकियों 2:11-10-12।
स्वर्गीय शिक्षक ने पूछा, इससे बढ़कर कौन सा प्रबल भ्रम मन को बहका सकता है कि तुम ये ढोंग करो कि तुम सही नींव पर निर्माण कर रहे हो और ये कि परमेश्वर तुम्हारे कार्यों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में तुम बहुत सी बातों में सांसारिक नीति के अनुसार काम कर रहे हो और यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहे हो। ओ, ये एक महान धोखा है, एक मोहक भ्रम है जो मनों पर अधिकार कर लेता है, जब वे लोग जिन्होंने कभी सत्य को जाना था भक्ति के स्वरूप को उसकी आत्मा और सामर्थ्य समझ बैठते हैं, जब वे ये मान लेते हैं कि वे धनी हैं और धन संपत्ति से बढ़ गए हैं और उन्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं, जबकि वास्तव में उन्हें सब कुछ की आवश्यकता है।
परमेश्वर अपने उन सेवास योग्यों के सेवकों के प्रति नहीं बदला है जो अपने वस्त्र निष्कलंक रख रहे हैं, परंतु बहुत से लोग पुकार रहे हैं शांति और सुरक्षा, जबकि उन पर अचानक विनाश आ रहा है। जब तक पूर्ण मन परिवर्तन न हो, जब तक मनुष्य अंगीकार के द्वारा अपने हृदयों को दीन न करें और सत्य को जैसा वो यीशु में है वैसा ही ग्रहण न करें, वे कभी स्वर्ग में प्रवेश न करेंगे। जब हमारी पंक्तियों में शुद्धिकरण होगा तब हम फिर निश्चिंत होकर न बैठेंगे ये घमंड करते हुए कि हम धनवान हैं, संपत्ति में बढ़े हुए हैं और किसी वस्तु के मोहताज नहीं हैं।
कौन सत्यतापूर्वक ये कह सकता है, हमारा सोना आग में तपा हुआ है, हमारे वस्त्र संसार से निष्कलंक है?
मैंने हमारे शिक्षक को तथाकथित धार्मिकता के वस्त्रों की ओर संकेत करते देखा। उन्हें उतारकर उसने नीचे की अशुद्धता को प्रकट कर दिया। तब उसने मुझसे कहा, क्या तुम नहीं देख सकती कि उन्होंने किस प्रकार ढोंग पूर्वक अपनी अशुद्धता और चरित्र की सड़न को ढाप रखा है? विश्वास योग्य नगरी क्यों कर वेश्या हो गई? मेरे पिता का घर व्यापार का घर बना दिया गया है, एक ऐसा स्थान जहां से दैवी उपस्थिति और महिमा प्रस्थान कर चुकी है। इसी कारण दुर्बलता है और सामर्थ्य का अभाव है। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 8 284-95।
1844 में जब एडविन वाद ने मध्यरात्रि की पुकार की घोषणा की, तब वो विश्वासी नगर था। 8/63 तक उसने विलियम मिलर की सेवकाई के माध्यम से स्थापित किए गए आधारों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जब उन्होंने आधारभूत सत्यों को एक ओर रखना शुरू किया और उन्हें जाली रत्नों और सिक्कों से ढक दिया, तब वे एक नई नींद बना रहे थे, जो उस कार्य को शुरू करने वाले, उसे अंजाम देने वाले और उसे आज भी जारी रखने वाले हैं, उन्हें भविष्यवाणी की आत्मा के लेखन में, जिन्हें महान प्रकाश मिला है के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके पास जो महान प्रकाश कभी था, उसे मिलर के स्वप्न में पेटिका में रखे रत्नों के रूप में दिखाया गया, जिसे मिलर ने अपने कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर रखा। वे रत्न सूरज से भी अधिक चमकते थे। अभी उद्धृत अंश में सिस्टर व्हाइट उन लोगों की पहचान करती है जिन्होंने महान प्रकाश पाया है, पर जिन्होंने अपने ही मार्ग चुने हैं, उन्होंने 833 में एक नया मार्ग चुना। वो कहती है कि ये एक मोहक भ्रम है जो उन लोगों के मन पर अधिकार कर लेता है जो कभी सत्य को जान चुके हैं, जब वे धर्मपरायणता के रूप को ही उसकी आत्मा और शक्ति समझ बैठते हैं, जब वे ये मान लेते हैं कि वे धनी हैं, धन संपत्ति में बढ़ गए हैं और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तव में उन्हें हर चीज की आवश्यकता है। वो लाओदीकिया की दशा की पहचान कर रही है, जिसे उन्होंने और उनके पति ने निर्धारित किया था कि वो 1856 में घटित हुई थी। तब वे 7 वर्षों तक परखे गए, पर 1863 में उस परीक्षा में असफल रहे और उन्होंने वो झूठी नींव खड़ी करना शुरू कर दी जो उस प्रबल भ्रम को साथ लाती है, जिसका उल्लेख पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को चेतावनी देते हुए किया है। थिस्सलुनीकियों में पौलुस की चेतावनी एडवेंटवाद के आरंभ और अंत दोनों के आंदोलन के लिए एक आधार स्तंभ है और मिलर के स्वप्न से पूरी तरह मेल खाती है, जो एडवेंटवाद के आरंभ और अंत दोनों से संबंधित है। उसके स्वप्न में बताया गया है कि जब सत्य के मूल रत्नों की पुनर्स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, तो वे सत्य एडवेंटवाद के आरंभ में आधी रात की पुकार के समय पहली बार जितना चमके थे, उससे 10 गुना अधिक चमकेंगे। ऐसा कैसे है कि मिलर की समझ अब उस समय की तुलना में अधिक चमकती है जब उसने पहली बार सत्य को पहचाना था? हबकुक के दूसरे अध्याय की 2 पवित्र पट्टिकाओं पर कई सत्य दर्शाए गए हैं। वे सत्य मिलर के स्वप्न में रत्नों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें अंतिम दिनों में मध्यरात्रि की पुकार से ठीक पहले अंततः पुनः स्थापित किया जाएगा। मिलर के स्वप्न में खिड़की से बाहर ले जाए जाने वाले नकली रत्न उन झूठे सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें झूठी नींव बनाने और सच्ची नींव को छिपाने के लिए एडवेंटवाद में लाया गया था, परंतु वे उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो झूठी नींव का निर्माण करने वाले झूठे सिद्धांतों को छोड़ने से इनकार करते हैं। द डेली विलियम मिलर के सत्य के ढांचे का लंगर था जिसने मूल नींव स्थापित की थी, और अंतिम दिनों में द डेली न केवल पैगनवाद का प्रतीक है, जैसा कि मिलर ने सही पहचाना था, बल्कि ये उस विद्रोह का भी प्रतीक है जिसने झूठी नींव उत्पन्न की। बाइबल, भविष्यवाणी की आत्मा और इतिहास सभी गवाही देते हैं कि 70/9 से 58/24 तक की न्याय घड़ी की पुकार विलियम मिलर द्वारा खोजे और प्रस्तुत किए गए संदेश की घोषणा थी। यही कारण है कि उस आंदोलन को मिलराइट आंदोलन कहा जाता है। तार्किक रूप से उस आंदोलन को अस्वीकार करना 70/9 से प्रकट उस प्रकाश को अस्वीकार करना है, जिसे दानियल ने ज्ञान में वृद्धि के रूप में पहचाना था। यशाया इफ्रैम के मतवालों के बारे में बोलता है और उन मतवालों को
उन उपहास करने वाले पुरुषों के रूप में पहचानता है जो यरूशलेम के लोगों पर शासन करते हैं। यशायाह बताता है कि वे सचमुच की दाख मधु से मतवाले नहीं हैं, वे आध्यात्मिक दाख मधु से मतवाले हैं। बाइबल में आध्यात्मिक दाख मधु का अर्थ प्रसंग के अनुसार या तो सच्ची शिक्षा होता है या झूठी शिक्षा। इफ्रेम के मतवाले झूठी शिक्षा के नशे में हैं, जो बाबुल की दाख मधु है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में टायर की वेश्या द्वारा और बेलशज्जर के उसकी अंतिम रंगरेलियों की रात द्वारा दर्शाया गया है।
यशायाह ने उस आध्यात्मिक मदहोशी के प्रभावों की पहचान की जो यरूशलेम की प्रजा पर शासन करने वाले ठट्ठा करने वाले शासकों पर छा जाती है।
ठहरो और विस्मित हो, चिल्लाओ, हाँ पुकारो, वे मतवाले हैं पर मदिरा से नहीं, वे लड़खड़ाते हैं पर प्रबल पेय से नहीं, क्योंकि प्रभु ने तुम पर गहरी नींद की आत्मा उंडेल दी है और तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। भविष्यद्वक्ता और तुम्हारे शासक दृष्टाओं को उसने ढांप दिया है और सबका दर्शन तुम्हारे लिए ऐसा हो गया है जैसे किसी मुहर बंद पुस्तक के वचन, जिसे लोग किसी विद्वान को देकर कहते हैं कृपा करके इसे पढ़ो, पर वो कहता है मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मुहर बंद है, और वो पुस्तक किसी अशिक्षित को दी जाती है ये कहते हुए कृपा करके इसे पढ़ो, वो कहता है मैं अशिक्षित हूं। तब प्रभु ने कहा क्योंकि ये प्रजा अपने मुंह से मेरे निकट आती है और अपने होंठों से मेरा सम्मान करती है, परंतु अपना हृदय मुझसे दूर कर लिया है और उनका मेरे प्रति भय मनुष्यों की आज्ञाओं से सिखाया जाता है, इसलिए देखो मैं इस प्रजा के बीच एक अद्भुत काम करूंगा, हाँ अद्भुत काम और आश्चर्य, क्योंकि उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नाश हो जाएगी और उनके समझदारों की समझ छिप जाएगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति प्रभु से छिपाने के लिए गहराई से खोजते हैं और जिनके काम अंधेरे में होते हैं और जो कहते हैं कौन हमें देखता है और कौन हमें जानता है, निश्चय ही तुमने बातें उलट पुलट कर दी हैं। क्या कुम्हार को कुम्हार की मिट्टी के समान समझा जाएगा? क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी उसने मुझे नहीं बनाया? या जो वस्तु रची गई वो अपने रचयिता के विषय में कहेगी उसे समझ न थी? यशाया 38:9-16।
बहन व्हाइट इन पदों को उद्धृत करती है और फिर जोड़ती हैं।
इसके हर एक शब्द की पूर्ति होगी। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के सामने अपने हृदय को दीन नहीं करते और जो सीधाई से चलना नहीं चाहते, वे अपने सच्चे उद्देश्यों को छिपाते हैं और उस गिरे हुए स्वर्गदूत के साथ संगति बनाए रखते हैं जो झूठ से प्रेम करता है और उसे गढ़ता है। शत्रु अपनी आत्मा उन मनुष्यों पर डालता है जिनका वो उपयोग कर सकता है, ताकि जो आंशिक रूप से अंधकार में हैं उन्हें वो छल सके। कुछ लोग व्याप्त अंधकार से ओतप्रोत होते जा रहे हैं और सत्य को अलग रखकर भ्रम को अपना रहे हैं। भविष्यवाणी से संकेतित दिन आ पहुंचा है। यीशु मसीह को नहीं समझा जाता, उनके लिए यीशु मसीह एक दंत कथा मात्र है। पृथ्वी के इतिहास के इस चरण में बहुत से लोग नशे में धुत मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। ठहरो और अचंभित हो, चिल्लाओ और पुकारो, वे दाखमधु से नहीं फिर भी मतवाले हैं, वे मदिरा से नहीं फिर भी लड़खड़ाते हैं, क्योंकि प्रभु ने तुम पर गहरी निद्रा की आत्मा उंडेल दी है और तुम्हारी आंखें मूंद दी हैं। भविष्यद्वक्ता और तुम्हारे हाकिम दृष्टाओं को उसने ढांप दिया है। आत्मिक मतवालापन उन बहुतों पर छाया है जो मानते हैं कि वे वही लोग हैं जिन्हें ऊंचा किया जाएगा। उनका धार्मिक विश्वास ठीक वैसा ही है जैसा इस वचन में दर्शाया गया है। इसके प्रभाव में वे सीधे चल नहीं सकते। अपने आचरण की राहें वे टेढ़ी कर लेते हैं। एक के बाद एक वे डगमगाते हुए इधर उधर लड़खड़ाते हैं। प्रभु उन्हें बड़ी दया की दृष्टि से देखते हैं। सत्य का मार्ग उन्होंने जाना नहीं है। वे वैज्ञानिक षड्यंत्रकारी हैं और जिन्हें अपनी स्पष्ट आध्यात्मिक दृष्टि के कारण सहायता करनी थी और कर सकते थे, वे स्वयं ही धोखा खा गए हैं और एक दुष्ट कार्य को सहारा दे रहे हैं।
इन अंतिम दिनों के घटनाक्रम जल्द ही निर्णायक हो जाएंगे, जब यह प्रकट हो जाएगा कि आत्मवाद के ये धोखे वास्तव में क्या हैं, दुष्ट आत्माओं के गुप्त कार्यकलाप। तो इनमें शामिल रहे लोग ऐसे हो जाएंगे मानो वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों।
इस कारण प्रभु कहता है, क्योंकि ये प्रजा अपने मुंह से मेरे निकट आती है और अपने होंठों से मेरा आदर करती है, परंतु उसने अपने हृदयों को मुझसे बहुत दूर कर लिया है, और मेरे प्रति जो उनका भय है वो मनुष्यों की आज्ञाओं से सिखाया गया है। इसलिए देखो, मैं इस प्रजा के बीच एक अद्भुत कार्य करूंगा, हाँ, एक अद्भुत कार्य और एक आश्चर्य, क्योंकि उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नाश हो जाएगी और उनके समझदारों की समझ छिपा दी जाएगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को प्रभु से छिपाने के लिए गहरा प्रयत्न करते हैं और जिनके कार्य अंधकार में होते हैं, और वे कहते हैं, कौन हमें देखता है और कौन हमें जानता है? निश्चय ही तुम्हारा चीजों को उलट पलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान ठहराया जाएगा, क्योंकि क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी, उसने मुझे नहीं बनाया, या क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी, उसमें समझ न थी। मुझे ये दिखाया गया है कि अपने अनुभव में हम इन्हीं परिस्थितियों का सामना करते आए हैं और कर रहे हैं। जिन लोगों को महान प्रकाश और अद्भुत विशेषाधिकार मिले हैं, उन्होंने उन नेताओं की बात मान ली है जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो प्रभु से अत्यंत अनुग्रहित और आशीषित रहे हैं, परंतु जिन्होंने स्वयं को परमेश्वर के हाथों से अलग कर शत्रु की पंक्तियों में खड़ा कर लिया है, संसार बाहरी रूप से सही लगने वाली भ्रामक भ्रांतियों से भर दिया जाएगा। एक मानव मन इन भ्रांतियों को स्वीकार करके अन्य मानव मनों पर प्रभाव डालेगा, जो परमेश्वर की सच्चाई के अनमोल बलों को झूठ में बदलते आए हैं। जब उन्हें विश्वास योग्य रखवालों की तरह आत्माओं पर नजर रखते हुए, जैसे कि उन्हें हिसाब देना है, खड़ा रहना चाहिए था, तब ये लोग पतित स्वर्गदूतों से धोखा खाएंगे। उन्होंने अपने युद्ध के हथियार डाल दिए हैं और बहकाने वाली आत्माओं की बातों पर ध्यान दिया है। वे परमेश्वर के परामर्श को निष्फल कर देते हैं और उसकी चेतावनियों व फटकारों को एक ओर रख देते हैं, और स्पष्ट हिनकी पक्ष में खड़े हैं बहकाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए। अब आध्यात्मिक मधो उन मनुष्यों पर हावी है जिन्हें कड़ी शराब के प्रभाव में आए व्यक्तियों की तरह लड़खड़ाना नहीं चाहिए। अपराध और अनियमितताएं, धोखाधड़ी, छल और अन्यायपूर्ण व्यवहार स्वर्गीय दरबारों में विद्रोह करने वाले उस नेता के उपदेश के अनुसार दुनिया भर में व्याप्त है। इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है। मैं बता सकता हूँ कि निकट भविष्य में क्या होगा, पर समय अभी नहीं आया है। शैतान की कपटपूर्ण युक्ति के माध्यम से मृतकों के रूप प्रकट होंगे और बहुत से लोग उससे जा मिलेंगे जो झूठ से प्रेम करता है और झूठ गढ़ता है। मैं अपने लोगों को चेतावनी देता हूँ कि हमारे बीच ही कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे और प्रलोभक आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, और उनके कारण सत्य की निंदा की जाएगी। बैटल क्रीक लेटर्स 10:3-2:180।
सभी भविष्यद्वक्ता, जिनमें यशाया और सिस्टर व्हाइट भी शामिल हैं, अंतिम दिनों की पहचान कर रहे हैं। इन दिनों एडवेंटवाद के नेता निस्संदेह शैतान के पक्ष में हैं, भटकाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं। सिस्टर व्हाइट ये कहकर एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करती है, जब ये आत्मवादी छलावे वैसे ही प्रकट किए जाएंगे जैसे वे वास्तव में हैं, दुष्टात्माओं के गुप्त कार्य, तो जिन्होंने इनमें भाग लिया है वे ऐसे हो जाएंगे मानो उनकी बुद्धि खो गई हो। अंतिम दिनों के इतिहास के उस मोड़ पर जब उनकी मदहोशी के बारे में यह प्रकट होगा कि वो दुष्टात्माओं का गुप्त कार्य है, एडवेंटवाद का नेतृत्व ऐसे मनुष्यों के समान हो जाएगा मानो उनकी बुद्धि खो गई हो। अंतिम दिनों में यरूशलेम में प्रजा पर शासन करने वाले, उपहास करने वाले पुरुषों के कार्य की मुहर खुल रही है। उस मुहर खुलने का चित्रण मिलर के स्वप्न में हुआ, जब मिलर ने प्रार्थना की और एक द्वार खुल गया। ये ठीक उससे पहले घटित होता है जब वो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है, जो 144,000 के मुहरबंदी की प्रक्रिया के बिल्कुल अंत को चिह्नित करता है। द्वार का खुलना व्यवस्थाओं में परिवर्तन को दर्शाता है, और उसी बिंदु पर तीसरे स्वर्गदूत का लौदिकियाई आंदोलन तीसरे स्वर्गदूत के फिलाडेल्फियाई आंदोलन में रूपांतरित हो जाता है। यशयाह के एक खंड में एप्रम के मद्यपियों के दुष्ट कृत्य का एक सारांश दिया गया है, जो वे पुरुष हैं जिन्हें विश्वास योग्य रक्षकों के रूप में डटे रहना चाहिए था। उस सारांश को इस प्रकार व्यक्त किया गया है,
निश्चय ही तुम्हारा वस्तुओं को उलट पुलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान समझा जाएगा, क्योंकि क्या कार्य अपने बनाने वाले के विषय में कहेगा, उसने मुझे नहीं बनाया, या जो वस्तु गढ़ी गई है क्या वो अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी, उसमें समझ नहीं थी।
मिलर ने द डेली की पहचान या तो मूर्ति पूजा के धर्म के रूप में या मूर्ति पूजक रोम के रूप में की है। ये अंततः शैतान का प्रतीक है, क्योंकि शैतान और मूर्ति पूजक रोम दोनों का प्रतिनिधित्व अजगर के रूप में किया गया है।
इस प्रकार जबकि अजगर मुख्यतः शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, वो गौण अर्थ में मूर्ति पूजक रोम का भी एक प्रतीक है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 439।
अंतिम दिनों में यरूशलेम पर शासन करने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए सिस्टर व्हाइट कहती हैं, कुछ लोग उस व्याप्त अंधकार से ओतप्रोत होते जा रहे हैं और सत्य को किनारे रखकर भ्रांति को अपनाते जा रहे हैं। भविष्यवाणी द्वारा इंगित किया गया दिन आ गया है। यीशु मसीह को समझा नहीं जाता, उनके लिए यीशु मसीह एक दंत कथा मात्र है। 1901 में जर्मनी से एडवेंटिज्म के एक नेता ने दानियल की पुस्तक में द डेली के विषय में पतित प्रोटेस्टेंट वाद का मिथ्या दृष्टिकोण प्रस्तुत करना शुरू किया। उस दृष्टि के अनुसार द डेली मसीह के पवित्र स्थान के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, या उस विचार का कोई रूपांतर। मैं कोई रूपांतर इसलिए कहता हूं क्योंकि 1901 के बाद के इतिहास में उस असत्य पर भिन्न भिन्न प्रकार से जोर दिया गया है, किंतु वे मिथ्या दृष्टियां सदैव यही निष्कर्ष प्रकट करती हैं कि द डेली मसीह के कार्य के किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है।
अंतिम दिनों के एडवेंटिज्म में द डेली का वो सिद्धांत जो एक रत्न था और जिसे मिलर ने शैतानी प्रतीक के रूप में पहचाना था, मसीह का प्रतीक है। जब 1901 में ये विचार प्रस्तुत किया गया तो बहुत कम लोगों ने ये मत स्वीकार किया कि द डेली शैतान का नहीं बल्कि मसीह का प्रतीक है। पर 1930 के दशक तक द डेली के उस सिद्धांत के रत्न को, जिसे मिलर ने 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 में पाई गई सत्य की शिरा से खोदकर निकाला था, ठीक उसी तरह अस्वीकार कर दिया गया जैसे 1863 में लेविटिकस 26 के 7 टाइम्स को अस्वीकार कर दिया गया था। 1863 काउंट से 1930 के दशक के बीच के इतिहास में कहीं एडवेंटिज्म ने बिना जाने अपना नेतृत्व बदल लिया था।
हे भाइयों, मैं तुम्हारे संकट को देखता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम जो भूल करते हो उसे सुधारने का कोई प्रयास करते हो? हो सकता है कि कई आत्माएं अंधेरे में चलते हुए ठोकर खाती जा रही हों, क्योंकि तुमने अपने पांवों के लिए सीधी राहें नहीं बनाई हैं। यदि तुम भरोसे के पदों पर हो तो मैं तुमसे और भी आग्रह पूर्वक विनती करता हूँ कि अपनी ही आत्माओं के लिए और उन लोगों के लिए जो तुम्हें मार्गदर्शक मानते हैं, जो जो गलतियाँ की गई हैं उनके लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो और अपनी भूल स्वीकार करो। यदि आप अपने हृदय की हट को पोषित करें और घमंड व आत्मधार्मिकता के कारण अपने दोषों को स्वीकार न करें, तो आप शैतान के प्रलोभनों के वश में छोड़ दिए जाएंगे। यदि जब प्रभु आपकी भूलें प्रकट करे तब भी आप न तो पश्चाताप करें और न स्वीकारोक्ति करें, तो उसकी व्यवस्था आपको उसी पाठ से बार बार गुजारेगी। आप वैसी ही प्रकृति की गलतियां करते रहेंगे, बुद्धि की कमी बनी रहेगी और पाप को धार्मिकता कहेंगे और धार्मिकता को पाप। इन अंतिम दिनों में जो अनेक प्रकार के छल कपट व्याप्त होंगे, वे आपको घेर लेंगे और आप अपना नेता बदल देंगे और आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपने ऐसा कर दिया है। रिव्यू एन हेरोल्ड 16 दिसंबर 1890।
यरूशलेम की प्रजा पर शासन करने वाले, उपहास करने वाले पुरुष जो विश्वास पात्र पदों पर हैं, पाप को धर्म और धर्म को पाप कहेंगे, और निश्चय ही तुम्हारा वस्तुओं को उलट पुलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान माना जाएगा, क्योंकि क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी, उसने मुझे नहीं बनाया, या जो वस्तु रूप दी गई है क्या वे अपने रूप देने वाले के विषय में कहेगी, उसे समझ नहीं थी। एडवेंटवाद की 4 पीढ़ियों में फैले क्रमिक विद्रोह में जो विश्वास पात्र पदों पर हैं, वे नेता बदल लेते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। उन्हें इसका पता नहीं चलता क्योंकि वे क्रमशः और लगातार अपनी त्रुटियों के प्रमाणों को अस्वीकार करते रहे। उसी क्रमिक विद्रोह में उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नाश हो जाएगी और उनके समझदारों की समझ छिपा दी जाएगी। वे सब कुछ उलट पुलट कर देंगे और पाप को धर्म कहेंगे और धर्म को पाप।
इस विद्रोह का प्रतीक द डेली का सिद्धांत है, जो मिलर के लिए एक शैतानी प्रतीक था और जिसे आज एडवेंटवाद मसीह के प्रतीक के रूप में पहचानता है, जो कभी विलियम मिलर के भविष्य सूचक अनुप्रयोगों के ढांचे को स्थापित करने वाला लंगर था। वो अब यरूशलेम की प्रजा पर शासन करने वाले, उपहास करने वाले पुरुषों की मदहोशी का प्रतीक बन गया है। दानियल की पुस्तक में द डेली से संबंधित प्रतीकवाद एडवेंटवाद की शुरुआत में मिलर के ताबूत में पहचाना गया, तब सूर्य की भांति चमका था, परंतु अंतिम दिनों में वो सत्य 10 गुना अधिक चमकता है, क्योंकि संख्या 10 परीक्षा का प्रतीक है और प्राचीन इसराइल के लिए 10वीं परीक्षा अंतिम परीक्षा थी।
आधुनिक फरीसियों ने मसीह के कार्यों को शैतानी शक्तियों का काम ठहराया है, पैगनवाद को परमेश्वर की पवित्र शक्ति ठहराते हुए।
फरीसियों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। उनकी वाक् प्रतिभा का उपयोग जगत के उद्धारकर्ता की निंदा करने में किया गया और लेख रखने वाले स्वर्गदूत ने उनके शब्द स्वर्ग के पुस्तकों में अंकित कर दिए। मसीह के कार्यों में प्रकट परमेश्वर की पवित्र सामर्थ्य को उन्होंने शैतानी शक्तियों का ठहराया। वे उसके अद्भुत कार्यों से आंख नहीं चुरा सकते थे, न ही उन्हें प्राकृतिक कारणों का परिणाम ठहरा सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ये शैतान के काम हैं। अविश्वास में उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के विषय में कहा कि वो केवल मनुष्य है। उनके सामने किए गए चंगाई के कार्य ऐसे कार्य जो किसी मनुष्य ने न किए थे और न कर सकता था, परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रगटीकरण थे। फिर भी उन्होंने मसीह पर ये आरोप लगाया कि वो नरक के साथ गठजोड़ में है। हठी, कुढ़े हुए, कठोर हृदय होकर उन्होंने सब प्रमाणों पर आंखें मूंद लेने का निश्चय किया और इस प्रकार उन्होंने अक्षम में पाप किया। मसीह एन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 4, 368।
हम अगले लेख में उस ज्ञान वृद्धि पर अपनी विवेचना जारी रखेंगे जो पहले स्वर्गदूत के आंदोलन में अनावृत हुई थी।